يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، نوٹ کیجئے، اللہ پھر بھی ان کو ایمان سے ہی پکار رہے ہیں. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے اپنے دین سے، چھوڑ دیتا ہے اس دین کو، کوئی فرق نہیں پڑتا. فسوف یات اللہ بقوم یحبہم، پس ان قریب اللہ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو جن سے اللہ تعالیٰ خوب محبت کرتا ہوگا. نمبر ایک لگا لیجئے کہ جن کو اللہ چاہتا ہوگا، اور دوسری صفت وَيُحِبُّونَهُ، یہ بھی اس سے محبت کریں گے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ ان سے کرے گا، یہ اللہ سے کریں گے. پہلے اللہ کی محبت کی بات آ گئی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. اگلی صفت کیا ہوگی ان کی؟ اذلتن علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے، مومنوں کے معاملے میں بڑی رخصتیں دینے والے ہوں گے، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں بہت سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتے ہوں گے. چوتھی صفت اعزتن علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے، بہت زیادہ ان کے دلوں میں کافروں کے لیے سختی ہوگی. اور کون سی سختی؟ اس کو ہم ابھی لفظ میں دیکھیں گے. بدتمیز نہیں ہوں گے لیکن اصولوں کے بڑے پابند ہوں گے، سخت اصولوں کے ہوں گے. اگلی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینے والے ہوں گے. اور اس سے بھی بڑھ کے صفت ولا یخافون لومت لائم، اور نہیں وہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. یعنی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جب کوئی ملامت کرے گا تو اس کی بالکل پرواہ ہی نہ کریں گے. یہ ساری صفات ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے. ذالک جو نا یہ واحد کے لیے آتا ہے، اس کو دیکھیں نا تو صرف آخری لفظ کے ساتھ اس کا تذکرہ مل رہا ہے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اگر جنرلائز کر لیں تو اوپر کی ساری صفات جو ہیں وہ مسلمانوں کو بتا دی اور کہہ دیا کہ جس کو بھی یہ ساری صفات مل گئیں، اس کے اندر یہ خوبیاں آ گئیں، تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ کا فضل اس پر ہے. اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والا اور خوب علم والا ہے. اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں، یعنی اگر ہم ان آیتوں کی ترتیب تو ہم نے ہلکی سی دیکھ لی نا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبر دیتا ہے. تھوڑی سی آیت 54 کو دیکھ کے پھر ہم ان کا خلاصہ کر لیں گے. اور وہ کیا ہے کہ یہاں بات ہوئی مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ، ارتداد کی. ارتداد کا لفظ جو ہے نا یہ رد سے ہے، لکھیے اس کو رو دال دال، کیونکہ اس کے روٹ میں بہت غلطی ہوتی ہے، لوگوں کو میم ڈال دیتے ہیں. رد، ریجیکٹڈ، ردی کی ٹوکری، کریش کین، یہ وہی لفظ ہے. یعنی جو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ریفیوز کر دیتا ہے تم میں سے کس کو؟ اپنے دین کو. یعنی تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب یہ ریجیکشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر ایک لفظ آتا ہے ارتداد. ارتداد اپوسٹیسی کہتے ہیں اس کو غالباً انگلش میں، اپوسٹیسی، یعنی کسی کا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا. شرن دیکھیں تو ایسے شخص کی سزا قتل ہے، اس پہ بات پیچھے ہو چکی ہے تو سورۃ بقرہ میں تفصیل سے. لیکن ہر ارتداد وہ ارتداد نہیں ہوتا جس کو آپ دین سے پھر کر کفر کی طرف جانے والا کہیں گے، بلکہ اس کا لغوی معنی بھی یہ آتا ہے اور عمل کے ساتھ بھی دیکھ لیں تو اس سے مراد ہے کہ بظاہر اسلام نام کا رہ جائے اور عمل میں اسلام نہ آئے. دل کا ارتداد ہوتا ہے، اور پہلے دل مرتد ہوتے ہیں پھر جسم مرتد ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے، آپ نے خواب بھی دیکھا कि आपके हाथों में कुछ कंगन पहने हुए हैं और आपने ऐसे फूंक मारी तो वो उड़ गए। किसी ने ख्वाब देखा और या अल्लाह के नबी ने देखा, वो मुख्तलिफ तरह से दो तीन चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हुआ क्या कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ही कुछ लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। पांच लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा कर दिया, जिसमें एक का नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हालात को देखा भाला, इधर उधर से सारी चीज़ों को देखा और फिर उसके बाद जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा और उस पर जुरत क्या की, कहने लगा कि मिन मुसैलमा रसूलुल्लाह इला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नऊज़ु बिल्लाह मुसैलमा जो अल्लाह का रसूल है उसकी तरफ से, मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है उनकी तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासिद के हाथ भेजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कासिदों यानी एम्बेसिडर्स का कत्ल मना ना होता तो मैं इसके कासिद को कत्ल करवा देता। इसने पेशकश की थी कि मैं आपको नबी मानने को तैयार हूँ अगर आप अपने कुछ इख्तियारात मुझे दे दें, और कुछ इस तरह की फरमाइशें भी की थी आपके बाद मुझे खलीफा अभी दुनिया में कर दें, यानी आपके बाद मैं नबी हूँ। इस शख्स ने लोगों को बहुत धोखे दिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने तो इसको उस वक़्त कुछ नहीं कहा, लेकिन हुआ क्या कि इसने दीन के अंदर कुछ इजाफे किए। और मैं जब ये बातें पढ़ती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। हम इसको कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब, लफ्ज़ भी ज़ुबान पे आता है तो ऐसे लगता है कि ज़ुबान गंदी हो गई, लेकिन आपको पता है इसने लोगों को इतना खूबसूरत डाइल्यूटेड सॉफ्ट किस्म का दीन दिखाया। रोज़े इसने माफ़ कर दिए, नमाज़ें कम कर दी, कम पढ़ लो कोई बात नहीं, शराब और जुए को जायज़ करार दे दिया, और इसी तरह का बड़ा अमेंडेड किस्म का दीन यानी जिसमें बहुत सारी रुख्सतें दी जाती हैं वो पेश की और कहा मैं रसूल हूँ। आपका क्या ख्याल है कि लोगों ने इसके साथ क्या किया होगा? मारा होगा इसको या इसको गालियाँ दी होंगी? लाखों का मजमा इसके साथ जमा हो गया। नबी का दौर है, आप सोचें उस दौर के लोग हैं, लेकिन लोगों को ज़रा रुख्सत मिली इसके साथ जमा हो गए। इससे क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई हक पर ना हो और कोई उसका साथ भी ना दे। जिस तरह हक वालों को अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस साथी मिल जाते हैं ना, जो हक की सच्चाई की बुनियाद पे साथ देते हैं, इसी तरह बातिल वालों को भी बहुत सारे साथी मिल जाते हैं। क्योंकि जब हक आता है ना तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बातिल चला गया। बातिल चला गया फिर तो वो मुकाबला ही ख़त्म हो गया। क़यामत तक हक और बातिल की जंग चलती रहेगी। बातिल दब जाता है, जाता नहीं है, मौजूद होता है, लेकिन ये ऐसे ही जैसे किसी कमरे में पहले एक नाइट बल्ब जल रहा था और किसी ने आके वहाँ ट्यूबलाइट खोल दी। अब ट्यूबलाइट जल रही है लेकिन आप गौर से देखें आप कहेंगे अरे नाइट बल्ब तो अभी तक चल रहा है। ये हाल होता है। नाइट बल्ब क्या है? बातिल। हक क्या है? बड़ी ट्यूब। तो बातिल पे भी लोग आ जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों को गलती लगती है, फलां वो तो इतने मशहूर हैं, फलां के साथ तो इतने लोग हैं, फलां के तो इतने बड़े बड़े मजमे जमा हो जाते हैं, फलां तो टीवी पे आते, फलां तो फिल्मों में आते, फलां तो बड़े बड़े स्टेजेस पे आते। तो याद रखिए, एक जुमला लिख लें और मैं आप सबको नसीहत करूँगी, अल्लाह ताला आपको दीन में आगे से आगे बढ़ाए, कभी भी शोहरत के चुंगल में ना फंसिएगा। इसलिए कि किसी का मशहूर हो जाना अलग बात है और उसका हक पे रहना दूसरी बात है। शोहरत का हक से कोई ताल्लुक नहीं। शोहरत और हक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मिल भी सकती हैं। कई हक वाले मशहूर हो जाते हैं, इसी तरह कई बातिल वाले भी मशहूर हो जाते हैं, और कई हक वाले बिल्कुल गैर मारूफ ज़िंदगी बसर करके दुनिया से चले जाते हैं, और इसका अपोज़िट भी होता है। जो लोग लोगों के प्रेशर में आके अपने फ़ैसले बदल लेते हैं ना, वो असल में बहुत धोखा खाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात करके बता रहे हैं कि देखो एक सरासर बातिल पे होने वाले शख्स ने इतने लोगों को अपने साथ जमा कर लिया। फिर इसी तरह एक दूसरा शख्स था अस्वद अंसी, नाम बहुत सारे हैं, मतलब बहुत इनकी तफसीलात हैं, और मैंने तो सिर्फ़ आपको मुसैलमा कज़्ज़ाब की सुनाई है कि क्या वजह, और इसका थोड़ा सा तज़किरा भी कर दूं कि ये वहशी बिन हर्ब के हाथों मारा गया था। वैशी कौन थे जिनके हाथों से दौरे जाहिलियत में हज़रत हमज़ा रदी अल्लाहु अन्हु का कत्ल हो गया था। उस वक़्त ये कुफर पे थे और इनके पैसे दिए थे इनको मालिक ने कि मार दो, पैसों के लिए मारा था, इस्लाम की नफ़रत नहीं थी दिलों में। जब मुसलमान हुए तो इस पर बहुत रंजीदा रहते थे, बहुत गम खाते थे कि मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि अल्लाह के नबी के चचा का कत्ल था, और आप बड़ा दुख महसूस करते थे इस पर। तो इन्होंने उस वक़्त ये नीयत की थी अल्लाह ताला से कि मेरे से इसका कोई कफ़ारा अदा करा, मुझसे कोई ऐसा काम करा कि मेरे इस गुनाह का गिल्ट ख़त्म हो। अल्लाह ताला ने इनकी ये दुआ कबूल की और इनके हाथों से फिर ये मुसलमा कज़्ज़ाब जो था मारा गया। और इसकी जो जमात थी, जो लोग इसके साथ जमा हो चुके थे, अब ज़रा सोचिए, एक छोटा सा बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है, इसकी ज़िंदगी में इसके साथ लाखों लोग थे, लेकिन जब लोगों ने इसको एक मुखलिस सहाबी के हाथों कत्ल होते देखा, इसके मरते ही वो सारे के सारे वापस मुसलमान हो गए। ये होते हैं बातिल का साथ देने वाले, हवाओं की तरह रुख बदल लेते हैं। हक वो कुदरत है, वो ताकत है, रास्ते में आने वाली रुकावटों से और दिल जमता है, परेशानियों में और काम होता है, और मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो बातिल का साथ देगा ना, ज़रा वो लीडर गायब, वो सारे गायब, वापस इस्लाम की तरफ आ गए। इसी तरह तुलैहा एक शख्स था, तुलैहा बिन खुवैलद, इसने भी मुकाबला किया, खालिद बिन वलीद गए और ये बहरहाल बच गया था, और बाद में फिर इसने तौबा कर ली थी और मुसलमान हुए। फिर इसी तरह अस्वद अंसी और उसकी कौम के मती और फरमाबरदार होने की खबर मिली हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, ये बहुत बड़ी फतह की खबर थी उनके लिए, और उस वक़्त भी फिर अल्लाह ताला ने इनको जमा दिया। पांच कबीले ऐसे थे जो अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात का इनकार करके मुर्तद हो गए। यानी ये पांच छह लोग तो वो हैं ना जिन्होंने कुफर कर दिया या ख़ुद ही नबूवत का दावा किया, लेकिन कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। ये वो वक्त था कि जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक तन्हा रह गए थे, और लोगों ने कहा कि आजकल इतने हालात तंग हैं, आप फिर एक नई जंग की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते ये जंग, बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं इन हालात में जाके हम एक नई जंग छेड़ें। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने नबी के सिद्दीक का सीना खोल दिया और उन्होंने उस वक्त खड़े होकर वो बात कह दी जो मैं आपको उन्हीं के लफ्ज़ों में पढ़ के सुना देती हूँ। जब सारे लोग बिखर गए तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, खुतबा दिया, फरमाने लगे, जो लोग मुसलमान होने के बाद रसूल करीम के दिए हुए अहकाम और कानून इस्लाम का इनकार करें, तो मेरा फ़र्ज है कि मैं इनके खिलाफ जिहाद करूँ। अगर मेरे मुकाबले पर तमाम जिन्नो इंस और दुनिया के शजर और हजर सबको जमा कर लाएं, सोचिएगा, और मेरा कोई साथी ना रहे, तब भी तन्हा मैं अपनी गर्दन से इस जिहाद को अंजाम दूंगा। डेडिकेशन। और ये फरमाकर घोड़े पर सवार हुए और चलने लगे कि मैं अकेला चलूँगा, ना कोई साथ दे। इस वक्त फिर सहाबा कराम आगे आए और अबू बकर सिद्दीक को उनकी जगह पर वापस बिठाया, और फिर मुख्तलिफ महाजों पर सहाबा कराम रवाना हुए। और उस वक्त फिर हज़रत अली और कुछ अबू दूसरे जो लोग हैं वो बयान करते हैं कि ये आयत तो ख़ास तौर पर अबू बकर सिद्दीक ही के बारे में है कि फ़सऊ फ़यातिल्लाहु बिकौमिन, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक शख्स भी पूरी कौम बन जाता है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पूरी उम्मत है जिनका तज़किरा कुरान पाक में आता है। तो ये तो है इस आयत का एक ज़ाहरी पहलू कि वो लोग जो अल्लाह के नबी के दौर या उनके बाद सहाबा के दौर में इस तरह से आए, कुछ ने अबू मूसा अलअशरी का नाम लिया कि वो हैं इधर जिनकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की हैं, लेकिन हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहते हैं, जहाँ इस्लाम ख़तरों में होता है तो वो ढारस देने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर ये सारी बातों की खबर देते हैं। लेकिन आप देखिए कि मुझे एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल भी याद आ गया, सुना देती हूँ। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सदमे मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो पर पड़े, अगर वो किसी मज़बूत पहाड़ों पर भी पड़ते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये लीडरशिप कोई छोटी चीज़ नहीं होती। हम तो कहते हैं ना गुलछड़े उड़ाने का नाम है लीडरशिप और व्हाटसोएवर, लेकिन हकीकत है, सर के ऊपर एक बाल के अंदर बारीक तलवार लटकी होती है अगर बंदा हक पे चलने वाला हो। आज क्यों लोग रिस्क नहीं लेते, आज क्यों दूसरों को नाराज़ नहीं कर पाते, उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि कोई ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों में जिनको जमा देता है, फिर वो लोग हकीकत में वो बन जाते हैं जिनकी सिफत अल्लाह ताला ने बयान की। ये तो वो मुर्तद थे जिन्होंने ज़ाहिरन इर्तदाद का इजहार किया, लेकिन दूसरा इर्तदाद दिलों का इर्तदाद है, आज हर तरफ दिखेगा। ख़ुद को मुसलमान कहना लेकिन इस्लाम से दूर रहना, इस्लाम का नाम लेना मगर इस्लाम के निज़ाम को नाफिज ना करना, अपनी ज़ात पे इस्लाम नाफिज करना सबसे मुश्किल काम है। नमाज पढ़नी बहुत आसान, रोज़ा रखना बहुत आसान, इसी तरह मुल्की सतह पे ख़ुद को इस्लामी मुल्क कहलाना पसंदीदा काम है, इस्लामी हुक्मरान कहलाना भी शायद पसंदीदा हो, लेकिन वहाँ इस्लाम का निफाज करना ये बहुत मुश्किल है। तो वो इर्तदाद के अंदर से कुफर से हमदर्दियाँ और ऊपर से इस्लाम का नाम। तो कहा फसौफ़यातिल्लाहु बिकौमिन, तुम में से कोई भी अल्लाह की मजबूरी नहीं है, अल्लाह किसी और कौम को ले आएगा। कल के दौर में अगर वो सहाबा थे या अबू बकर थे या अबू मूसा अलअशरी थे, तो हर दौर में हर वो शख्स जो इस्लाम के गलबे के लिए काम करेगा, जो जन्नल जाहिलिया के ख़िलाफ़ काम करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यहाँ अपने लोग कहते हैं। सिफात पे ज़रा गौर कर लीजिए, युहिब्बुहुम, सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करे। देखिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का फ्यूल जब अंदर होता है ना, तो कुर्बानियाँ देनी आसान हो जाती हैं, काम करने आसान हो जाते हैं। हर काम के करने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए होती है ना, अल्लाह की मोहब्बत की एनर्जी जब दिलों में आती है ना, तो फिर काम करने आसान हो जाते हैं। और दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत, ये दो तरफ़ा अमल है। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको तौफीक दे देता है उससे मोहब्बत करने की। आप कहेंगे देखो अल्लाह मोहब्बत करेगा तो फिर ही हम करेंगे ना, नहीं, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के तरीके भी सिखा दिए। दुआएं मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत चाहती हूँ। फिर इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी की सुन्नतों को मेयार बना दिया कि जो ये चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, तो वो अल्लाह के नबी की तरीक़ों पर चले, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे और उन सारे मामलों को अपनी ज़िंदगी में रखे। قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورت آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے تو وہ رسول کی اتباع کرے۔ سنتوں کے اوپر عمل کرنا اللہ کی محبت دلا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت جو ہوتی ہے نا، ایک نئی شخصیت کو جنم دیتی ہے، انسان بڑا بہادر ہونے لگتا ہے، عظیم بنا دیتی ہے یہ محبت۔ العزیز کی محبت بندے کو دوسروں کی نظروں میں عزیز بنا دیتی ہے، پھر دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مجھے کوئی اچھا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ نہ وہ دوسروں کی محبت کے لیے کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی نفرت یا ان کے بغض سے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کو بہت پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں حق نہیں دیا گیا، ہمیں امپورٹنس نہیں دی گئی، ہماری عزت نہیں کی گئی، ہماری قدر نہیں کی گئی۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری کوششوں سے نتائج کیا نکل رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں یہ معیار بنا لیا کہ اللہ کی محبت کو سب سے اوپر اور باقی ساری محبتوں کو اس کے نیچے کر دیا، پھر ایسے بندے کے اندر اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، جو دن بدن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کی محبت نیچے اور دوسری محبتیں اوپر آ جائیں، تو پھر اس سے الٹ رویہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی محبت ساری محبتوں سے مختلف ہے، دنیا کی ہر محبت غم دیتی ہے۔ یہ جملہ لکھیں اور اپنے پیاروں کے نام نیچے لکھیں۔ آپ کہتے ہیں کیسے؟ سب سے بڑی محبت تو ماں اور بچے کی ہے۔ میں کہتی ہوں جتنا ماں کو بچے کا غم لگا رہتا ہے، اتنا تو کسی کا نہیں لگتا، بچے تو آنکھوں کے آنسو بن کے گرتے ہیں۔ ہر محبت غم دیتی ہے، لیکن اللہ کی محبت خوشی دیتی ہے۔ ایسے لوگ پھر دنیا سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت، अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों के लिए बड़े जलील होते हैं। अज़िल्ला का लफ्ज़ जो है ना, ये ज़ाल लाम लाम से है, पीछे पढ़ चुके हम गाय के वाक्य में ला ज़ुलूल में। जलील या ज़ुलूल दोनों की जमा अज़िल्ला आती है। इसका मतलब क्या होता है? नरम, सहल, आसानी से काबू में आने वाले, ये सारी मानी मुराद हैं। यानी ये लोग मुसलमानों के सामने नरम होंगे। अगर किसी मामले में मुसलमानों से इख्तलाफ हो भी जाए तो आसानी से काबू में आ जाते हैं। मरने मारने पे नहीं तुलने लगते, लड़ने पे नहीं लगते, झगड़े छोड़ देंगे। चाहे अपनी बात में वो सच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन झगड़ा छोड़ देते हैं, अपनी ज़ात को आगे नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत है कि मैं उस शख्स को जन्नत के वस्त में एक घर की खुशखबरी देता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। वो नतारे नहीं करवाता, वो कहते हैं मैं पीछे हो जाऊँ तो तुम सच्चे हो जाओ, मैंने तो अपने रब से इसका बदला लेना है। तो ऐसे लोग अपने हकूक़ और मामलात में कोई झगड़ा नहीं करते, और ईमान वालों के लिए उनके दिल बड़े नरम होते हैं। टेम का लफ्ज़ आता है ना जानवरों के लिए, किसी जानवर को सुधा देना, इसको भी ज़ुलूल कहते हैं। कि इनका माल, इनकी सारी चीज़ें मुसलमानों को तकवीत देने के लिए आती हैं। ये सताते नहीं हैं मुसलमानों को, ये अपना टैलेंट सारे का सारा इस्लाम पे लगाने लगते हैं। ये खैर ख्वाह होते हैं, ये नरम मिजाज होते हैं, ये मुसलमानों की गलतियों के ऊपर बल्कि ख़ुद ही एक्सक्यूज़ देने वाले हो जाते हैं। नहीं, इनका ये कसूर है, ये बेचारे मुसलमान, ये बड़े अच्छे हैं, बस इनके हालात ऐसे हैं। ये नहीं कहते कि मुसलमानों को सारी दुनिया में नशर करें, और इसके बरक्स आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, बड़े सख्त हैं। आइज़्ज़ा का लफ्ज़ अज़ीज़ की जमा है, अल्लाह ताला का भी नाम है ना अल अज़ीज़। इसका मानी गलबा पाने वाला, कवी और सख्त, ये तीनों नाम अल्लाह ताला के नाम के साथ भी आते हैं। कि ये बड़े गालिब होते हैं, कवी और सख्त होते हैं, मतलब क्या है कि ये लोग काफिरों से हमदर्दी तो रखते हैं लेकिन उनसे इम्प्रेस नहीं होते, उनको आइडियलाइज नहीं करते, अपने अकायद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये उनकी तरह हवा के पीछे चलने वाले नहीं होते, ये हुदन की पैरवी करने वाले होते हैं। काफिर इनके अंदर कोई उंगली नहीं घुसा सकते, इनकी तो मेंटल वेवलेंथ ही काफिरों से नहीं मिलती। ये बेरहम नहीं बल्कि अपने असूलों के मजबूत होते हैं। ये सिफत मुसलमानों में दरकार है काफिरों के साथ। इसी को सूरत अल-फतह में कहा गया, अशिद्दा वलल कुफारी रहमा उबैनहुम, काफिरों पर बड़े शदीद और आपस में बड़े रहम वाले होते हैं। देखिए, पहली सिफत का हासिल हकूक़ की तकमील था, और दूसरी सिफत का हासिल हकूकुल इबाद और मामलात का इतदाल है। अब तीसरी सिफत बयान की जा रही है, युजाहिदू नफी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाले होते हैं, और जिहाद मेहनत के लिए आता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ये तलवार पकड़ने का नाम नहीं है, ये मेहनत करने का नाम है। ये झाड़ू पकड़ना भी जिहाद है, जिस तरह तलवार और कलम पकड़ना जिहाद है। ये अल्लाह के रास्ते में मेहनतें करने वाले होते हैं, ये सच्चे दीन की इशात और उसकी बर्तरी के लिए जिहाद करते हैं। इनका हासिल क्या है? कि कुफर और इर्तदाद के मुकाबले में अपनी हर चीज़ पेश कर दें। ये फिर हर चीज़ में मेहनत करने वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि सिर्फ़ इबादत के नाम पर मस्जिद में बैठने ही को काफ़ी नहीं समझते। और इस सिफत से ये बहुत बड़ी हकीकत भी पता चलती है कि दुनिया में अगर इर्तदाद वालों या दीन से फिरने वालों का मुकाबला करने के लिए जो लोग दरकार हैं, वो सिर्फ़ इबादत के नाम पे मस्जिद में बैठने वाले और नरम होने वाले नहीं होंगे, बल्कि इकामत दीन का जज्बा हो, इस्लाम को गालिब करने का बदला हो। लेकिन इन तीन चीज़ों के बाद एक चौथी सिफत, अगर वो ना हो तो ये पहले काम भी नहीं हो सकते। वो क्या है? वला यखाफून लौमत लाइम, ये किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरते। ये क्या चीज़ है? उर्दू में जो लफ्ज़ है ना मलामत, इसी से है। लौम, लाम, हमज़ा, मीम, इसका रूट भी हो सकता है, वाव मीम भी हो सकता है। देखिए, दो लफ्ज़ होते हैं, एक लफ्ज़ है मुखालफत, आप लाइन लगाएं अपने पेज में, दो कॉलम बना लें, एक तरफ लिख लें मुखालफत, اور اس کے ورسس یعنی اس کے بالمقابل ملامت. یہاں لفظ کیا ہے ملامت؟ کہ یہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اب ڈرنے کی بات تو بعد میں, پہلے سمجھ تو لیں کہ ہوتی کیا ہے اور کرتا کون ہے. مخالفت دشمنوں کی طرف سے آتی ہے جبکہ ملامت اپنوں کی طرف سے آتی ہے. رشتہ دار, دوست, پیارے, گھر والے, ساتھی, ان کی باتیں نہیں سنی جاتی. دوسرا فرق دونوں میں کیا ہے کہ مخالفت کھلم کھلا ہوتی ہے, برملا ہوتی ہے, کرنے والا بتاتا ہے ہاں میں کروں گا تم پہ تنقید, تم مجھے اچھے نہیں لگتے. اس کے برعکس جو ملامت ہے نا وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے, یہ تانوں کے تیر ہوتے ہیں. کہو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو, یہ انداز ہوتا ہے ملامت کا, برملا نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیے تیسرا فرق دونوں میں کہ مخالفت کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. دیکھیے جس کو آپ سے کوئی اعتراض ہے وہ تو گن رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ایپ دکھیں اور وہ آپ کو مشہور کرے. اس کے برعکس ملامت کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا, سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کہے گا مجھے یہ بات, آئی کینٹ ایکسپیکٹ, میں تو امید ہی نہیں کر سکتی. پھر آپ دیکھیے کہ مخالفت کو سہنا نسبتاً آسان ہے لیکن ملامت کو سہنے کے لیے بڑا دل اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اچانک چوٹ جو ہوتی ہے تو وہ بڑی گہری لگتی ہے, کچھ پہلے سے انجیکشن لگنا ہونا تو بندہ ذرا ہلکا پھلکا تیاری کر چکا ہوتا ہے, لیکن اگر اچانک کٹ لگ جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جس بندے کو امید ہی نہیں تھی کہ کوئی مجھے برا کہے گا وہ برا کہنے لگے تو دکھ بہت ہوتا ہے. دشمن سے تو پہلے ہی امید نہیں ہوتی کہ وہ مجھے اچھا کہے گا, دکھ کم ہوگا, لیکن اس کے برعکس دوستوں کی باتیں زیادہ چپتی ہیں. اب یہ ملامت ہوتی کیسے ہے؟ کبھی آپ کی اور میری ہوئی؟ آپ کہیں گے نہیں, الحمدللہ بڑے محفوظ ہیں. آپ کہیں میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ چھٹے پارے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوئی. کچھ جملے صرف اس سوچ کے تحت کہ پتہ تو چل جائے کہ ملامت ہوتی کیا, بولے ہی نہ بن کے دنیا سے چلے جائیں. ہاں مثلاً آپ دیکھیے, تمہیں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا تمہیں, یہ تم نے اپنا حال کیا بنا لیا ہے, نہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ کہاں سے سن کے آئی ہو یہ باتیں. اچھے بھلے گھر میں تم نے پھوٹ ڈال دی, تم نے تمہیں تنگ کر کے رکھ دیا ہیں. اچھا بھلا خاندان تھا اور تم نے یہ کیا اجنبیت کی دیواریں کھڑی کر دی کہ اب عورتیں الگ بیٹھیں گی اور مرد الگ بیٹھیں گے. اور کچھ تو پیارے پھر اس طرح بھی پیار دکھاتے ہیں کہ دیکھو اتنے قریبی رشتے, فلاں تمہارے ابا کے دوست کے چچا کے بیٹے کا داماد ہی تو تھا اور تم نے اسے بھی پردہ کر لیا, اتنا قریب کا رشتہ اور تم نے اسے حجاب کر لیا. اس طرح کی باتیں, ان کو کہتے ہیں ملامت کی باتیں. اور دیکھو تم سے اب سب کٹ کے رہ رہے ہیں, اب سوچ کے رہنا. اور سوچ لو پھر اگر بیٹھی رہی اماں کے گھر پہ ہی تو پھر سب مجھے نہ کہنا کہ کسی جگہ رشتہ نہیں کیا, کون دے گا تمہیں بیٹی, یہ داڑھی رکھ لیے کہاں جاؤں گی تمہارے لیے دلہن ڈھونڈنے. یہ جملے ہوتے ہیں ملامت والے. اب بتائیے ذرا دل کا کیا حال ہے, ہوئی ہے چھ پاروں کے دوران کہ نہیں؟ اللہ اکبر, اب یہ جملے سنے نہیں جاتے, یہ تانے نہیں برداشت ہوتے. اور مومن اپنے رویوں کے اعتبار سے بڑا امن پسند ہوتا ہے, اس لیے سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سب کو خوش رکھوں گا تو سب خوش ہو جائیں گے, اس لیے وہ ان باتوں کو سن کے بیک ٹریک ہونے لگتا ہے, جن قدموں سے آتا ہے واپس جانا چاہتا ہے. اس کو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ان کو خوش رکھوں گا نا تو یہ خوش رہ جائیں گے. لیکن آج آپ اور میں یہ بات اپنے نوٹس میں بڑا بڑا لکھ کے جائیں, کیونکہ یہ آیتیں دوبارہ نہیں آئیں گی. اور وہ کیا کہ جن کو آپ خوش رکھنا چاہیں گے نا وہ کبھی آپ سے خوش نہیں رہیں گے, کوئی ضروری نہیں ہے, لازم ہے ہی نہیں. ان کو خوشی کب ہوگی؟ جب ان کے حق کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اللہ کے حق بھی دیں گے تو پھر خوش ہوں گے. وہ اپنا حق نہیں مانگتے رشتہ داریوں کے نام پہ, تقاضوں کے نام پہ, وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ اللہ کا بھی حق دے دو. آپ ان کو سارا ان کا حق دے دیں کبھی خوش نہیں ہوں گے. وہ چاہتے ہیں آپ مجاہد فی سبیل اللہ کی پوسٹ سے ریزائن کر دیں, چھوڑ دیں, آپ اناؤنس کر دیں کہ آج کے بعد اب میں گھر میں بیٹھوں گی, پھر وہ خوش ہوں گے. اب میں دین کے کاموں میں اتنی زیادہ انوالو نہیں, پھر خوش ہوں گے. ये अपने हक पे नहीं खुश होते, ये अल्लाह के हक की कीमत पे खुश होते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले लोग। ये फिर ऐसे जुमले करके दिखाएंगे कि आपको भी लगेगा कि हम तो बिल्कुल गलती पे हैं। फिर इंसान डिप्रेस होने लगता है, लगता है कि मैं इनका हक नहीं दे रही, मुझे लग रहा है मैं इनकी ज़्यादती कर रही हूँ, गिल्ट है। और जब अपने ही बच्चे ख़राब हो जाएं तो दूसरों के बच्चों की क्या फ़िक्र करूँ, और घर तो अपना बिगड़ रहा है, दूसरों का भी बिगाड़ूँ, बस फिर इंसान पलटने लगता है। हालांकि याद रखिए, अगर इन्होंने खुश होना होता तो हो चुके होते किससे। तारीख के सारे वर्क उलटते जाइए, अगर ये लोग खुश होते सिर्फ इस बात पे कि हमें हमारा हक दे दो, तो ये खुश होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते, जिनको सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह के नबी पर नबूवत के दावे के बाद जो सबसे पहला इल्ज़ाम लगा था वो क्या था, आप में से कोई जानता है? कहते थे ये रिश्ते नातों को तोड़ रहा है, इसकी दावत पे लड़के भी मुसलमान हो रहे हैं और माँ बाप को छोड़ रहे हैं, जवान लड़कियों का दिमाग ख़राब हो गया, ये देखो बीवी शौहर कुछ और है, ये इधर चली गई। इसी जोम की बुनियाद पे अबू जाहल ने बदर के मौके पे जाते हुए काबा का गिलाफ पकड़ के कहा था कि अल्लाह तेरी नज़र में जो ज़्यादा सिला रहमी करने वाला है आज उसको बचा ले, और जो रिश्ते नातों को तुड़वा रहा है, जो घरों में बिगाड़ डाल रहा है, उसको आज तबाह कर दे। ये यकीन था ना, आप सोचे कोई बेवकूफ़ तो नहीं था अबू जाहल? हम अबू जाहल उसको कहते हैं, वो तो अबुल हकम था, हुक्म का बाप बनता था। बेवकूफ़ वो कह सकता था कि मैं अगर रिश्ते तोड़वा रहा हूँ तो मैं हरम में मारा जाऊँ? और देखिए उसकी बात कितनी सच हुई, वो खुद मारा गया। बस लोग सिला रहमी का नाम अल्लाह के हक लेना ले लेते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, और बात क्या होती है कि इंसान इन बातों को सुनकर परेशान होता है। देखिए ये जो लफ्ज़ अल्लाह ने बोल दिया ना इधर, वला यखाफून लौमत लाइम, ये वो बात है कि जिस पे बड़े बड़े फिसल जाते हैं, वो लोग भी जो बड़ी बड़ी मुखालफतों के सामने पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं ना, सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, वो भी मलामतों के वक्त में हट जाते हैं। और ख़ानदान, इस लफ्ज़ को लिख के हाईलाइट करें, ख़ानदान के फ्रंट पर आकर बड़े लोग इस्लाम से और दीन से पीछे फटने लगते हैं, ख़ानदान की बातें नहीं सुनी जाती, वो जो भी कहें जो भी करें मानना पड़ेगा। अब क्या करें, जब इंसान दीन पे आता है ना तो फिर ये ताना जब मिलता है ना, लो तुम्हारा दीन ये सिखाता है, तो परेशान हो जाते हैं। लो अब तुम बच्चों को छोड़ के तो अब तुम कुरान पढ़ने जा रही हो, नहीं ये ताना कभी नहीं मिलेगा जब बच्चों को छोड़ के माँ जॉब करने जाएगी, वो अब्बा भी रखेंगे, दादी भी रखेगी, नानी भी रखेगी, और जिसका कोई नहीं वो उसका अरेंज भी करेगा। मैं ये नहीं कहती कि कुरान पढ़ने वाले नहीं आया करना चाहते, लेकिन सोच ये पैदा हो गई माशरे में, ये आज की सोच नहीं, ये हर दौर की सोच थी कि बस ये नहीं होगा। अब क्या करें, बातें तो लंबी होती जाएंगी ना, करें क्या? कैसे पता चले कि मैं हक वालों के हक दे रही हूँ, शौहर के हकूक पूरे कर रही हूँ कि नहीं, बीवी होने के कर रही हूँ कि नहीं? क्योंकि बस बीवियाँ भी बड़ी टेढ़ी होती हैं, वो पांच वक्त जमात से नमाज़ पढ़ता देख के मर्द को कहती है मैं नहीं तुम्हारे से रह सकती, तुम्हें कोई बीवी के हकूक का पता ही नहीं है, ये तुम नमाजें सूझती रहती हैं और ये हो रहा है, घर बैठो और बच्चों को देखो, ये दोनों तरफ से बात होती है। लेकिन चूँकि हम ख़वातीन हैं, बात सुनने वाले भी ज़्यादा वही होते हैं, तो मिसालें ज़्यादा शौहरों की तरफ चली जाती हैं। लेकिन यकीन करें कि बस बड़ी टेढ़ी औरतें हैं जो अपने मर्दों की जन्नत को तो दांव पे लगा के बैठी हुई हैं, वो उनको माँ बाप से नहीं मिलने देती। अब वो कहते हैं क्या करूँ, अब बीवी को खुश रखूँ कि ना करूँ, करें क्या? ऐसे वक्त में फारिग बैठ के अपने ज़मीर से पूछें, अंदर झांक के लिखें। कुरान पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें समझ आने लगती हैं। अब चूँकि ये बात हो रही है हुकुकुल इबाद की, सिला रहमी की, अपने नोट्स को दोहरा लें, कभी उस्तादों ने सिला रहमी पे क्या बातें लिखाई, नंबर एक, नंबर दो, नंबर चार। मेरा ख्याल है कि सूरत निसा की पहली आयत पे जब हम लोग भी थे तो 10-12 हदीसें हमने सिला रहमी पे पढ़ी थी और नोट भी की थी, और तस्करा भी हुआ था कि क्या चीज़ किसका हक है। बस ये हक देती हूँ, ओके चेक मार्क, ओके ओके। आप कह रहे हैं मैं तो सारी दे रही हूँ, काम तो मैं पहले भी करती थी, अब तो और ज़्यादा एहतियात से करती हूँ, सफाई पहले भी रखती थी, अब भी रखती हूँ, बच्चे भी पल रहे हैं, सब ठीक है, तो बस फिर उसके बाद मुतमईन हो जाए। वला यखाफून लौमत लाइम, फिर लोगों की रज़ा की फ़िक्र ना करें। क्यों? इसलिए कि जब हम लोगों की खुशी की बड़ी फिक्र करते हैं ना, तो मलामत बहुत बड़ी लगती है, फिर बहुत बुरी लगती है फिर मलामत। फिर इसी घबराहट में हम लोगों को अल्लाह का हक भी देने लगते हैं। देखिए, कुछ लोग किसी को कोई हक भी नहीं देते, लेकिन लोग उनसे बड़े खुश होते हैं। कभी वो उनकी मुश्किल में काम नहीं आएंगे, पैसे रुपए से मदद नहीं करेंगे, बकील भी हैं, दावते नहीं पकाएं, लेकिन वो खुश कैसे लोगों को करते हैं? फिर एक ज़रा पेट जुमला ताना मिलता है, तुम्हें पता है मेरी फलां दोस्त 3 बजे से आई हुई थी मेहंदी सजा के, अभी गई हैं घर में तैयार होने, और तुम अपनी हो क्या भाई हो? तुम्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है। मेरी फलां दोस्त ने मुझे किसी भी मुश्किल मुल्क का नाम ले लें वहाँ से फ़ोन करके मेरी बर्थडे याद कराई, और तुमने पास रहते हुए मुझे विश नहीं किया। इस तरह के जुमले, वो सिर्फ 2-3 घंटे आके मेहंदी के थाल सजा के ऑल टाइम फेवरेट्स बन गए, और आपने सारा घर साफ करके सब कुछ ऊपर किया, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि अम्मी मैं मेहंदी के फंक्शन में नहीं जाऊँगी, तो बस आप उस लिस्ट से नीचे गिर गए। तो शौक से गिरे। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी लगा लोगों को, बड़ा अजीब लगा, ये क्या, वो ये क्या दीन है, हो इस तरह की बातें हुई, और एक वक्त आएगा कि दोबारा ये अजनबी होगा। तो फतूबा, खुशखबरियाँ, खुश आमदेद, वेलकम उन लोगों के लिए जो ऐसे दौर में इस्लाम के लिए अजनबी हो जाए। कहीं मौका मिला तो आपको एक साद गम दी जो उनका नशीद भी सुनवाऊँगी, जो उन्होंने कहा फतूबा लिल गुरबा गुरबा के नाम पर। लेकिन यकीन करें कि अल्लाह के रास्ते में इंसान वाकई अजनबी हो जाता है, ख़ानदानों की नज़रों से गिर जाता है, बाज़ दफ़ा घर वालों से। लेकिन गम ना करें, आप क्या करें? नंबर एक, कभी किसी की गिबत ना करें, ये है कतअ रहमी, सिला रहमी का तकाज़ा है, ना गिबत करें, ना किसी को ताने दें। ज़रूरत पड़े चुपके से जाके उनकी मदद करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि सजा सजा के थाल में लोगों को तोहफे पेश करें, आपकी नेकी तो अल्लाह के लिए है। देखिए, जो नेकी होती है ना, सीक्रेट होता है जो किसी दूसरे को नहीं बताता। वो कहता है मैंने रब के लिए की, चुपके से बताई, अल्लाह फ़लाँ को ज़रूरत है दे आऊँगा, फ़लाँ को मेरे काम की ज़रूरत है मैं उसकी मदद कर दूँगा, वो मेरे से बात भी ना करे मैं चुपके चुपके उसके पाँव दबा दूँगा, मैंने तो तेरे लिए करना है। और जो अल्लाह को दिखा के नेकियाँ करते हैं ना, फिर वो मलामत वालों की मलामत से बेपरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जिसको दिखानी थी उसको दिखा दी, उसने देख लिया, अब किसी और के देखने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ करें क्या कि अपने ऊपर से सेंसिटिव होने का स्लोगन निकाल दें, मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मुझे किसी की बात सुनी नहीं जाती, सुबह से सर में दर्द है, आँखों से आंसू जा ही नहीं रहे, मुझे तो वो लफ्ज़ नहीं भूल रहे, मुझे तो फला मंज़र नहीं भूलता। ये सब जुमले अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये ओवर सेंसिटिव होना जो है ना, ये सेल्फ वर्शिप होती है, ये खुद को पूजना है। देखिए, कोई इस्लाम को गाली दे हम कहते हैं सोके अब इनको कौन इनके मुंह लगे, और कोई हमें गाली दे हम कहते हैं तुम होते कौन हो। बस यहीं से फ़र्क देख लें, ये असल में अपने नफ्स को पूछना होता है। इन चीज़ों से इंसान अपने आप को दूर रखे, दुआ करें। कोई आपके दीन का दुश्मन तो नहीं होता, कह के तो कोई नहीं होता, लेकिन कोई किसी काम में, मैं ये सिर्फ आपके यहाँ आके कुरान पढ़ने पर नहीं कह रही, वल्लाही कई लोग आपको रोज़े भी नहीं रखने देंगे, कई को आपकी सेहत बड़ी प्यारी होगी, आंखें अंदर चली गई और ये हो गया, कई लोगों को आपकी नमाज भी बोझल लगेगी। सारे मामलात पे एक बात रखें, अल्लाह के आगे अपने हाथ उठा दें, अल्लाह ये फ़लाँ मेरा साथ नहीं दे रहा इस रास्ते में, दिल तेरे हाथ में, मेरे नहीं, तू इसके ऊपर डाल। यकीन करें 2-3 मिनट लगेंगे बस, और जैसे आप किसी को सारी अमानतें दे के खाली हाथ होते कहते हैं शुक्र है दे दी, माँ को अपना जेवर का भरा हुआ बैग पकड़ा देंगे ना, आप कहेंगे तू पकड़ मैं जा रही हूँ शादी में, और बच्चा उठाए फिर रही थी बेटी, माँ को देखा कि अम्मा तुम पकड़ो इस बच्चे को, वो जो सूदगी है ना उसको कम से कम 70 से मल्टीप्लाई कर लें। वल्लाही मैं पूरे यकीन से, शऊर से, किसी जज्बात में आए बग़ैर कह सकती हूँ, आजमा के देख लें, जिस बंदे का दिल आपने रब के हाथ में डाल दिया, ऐसे टेम होगा आपके आगे, ऐसे असीर होगा अल्लाह का कि आप खुद हैरान होंगे कि ये वही शख्स है जो कल तक ये था। फिर वो मुखालिफ जो हैं वो मुआविन बनने लगते हैं, लेकिन इसके लिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें। तड़पें, हम कितना रोएं, हमने भी अभी वही 4-6 नेकियां की हैं जो शौहरों को बुरी लगती हैं, अभी हम भी बस उन्हीं नेकियों में उलझे हुए जो जाहिर से ताल्लुक़ रखती हैं। ताल्लुक जोड़ें, युहिब्बूनहू व युहिब्बूनहुम, सब के लिए दुआ करें। हाँ, अगला काम जो इसके बाद आपने करना है वो ये है, अपना मुहासबा, चेकलिस्ट बनाएं। ये जो कह रहे हैं कहीं सच्ची तो नहीं है, कहीं मैंने मुजाहिद फी सबील अल्लाह का लेबल लगाकर इनके हक की तो नहीं देने छोड़ दिए। हर वक्त घर में यही तो नहीं शोर मचाती, मेरा टेस्ट है, मेरा पेपर है और मुझे पढ़ना है, और घर गंदा तो पहले था, बोर ही तो नहीं रहने लग गया। चेक करें, अपना मुहासबा करें, और वाकई अगर आप हक तलफी कर रही हैं ना तो फिर अच्छा करें। हो सकता है इस्लाम अपने दीन से पहले आप वाकई नहीं केयर करती थी, तो अब करिए। सबसे पहले अगर अपने अंदर अच्छी आदत डालनी तो ये डालें, स्माइली, ऑर्गेनाइज्ड, शौहर के लिए खुशी का सबब, सास के लिए चले और कुछ नहीं बन सकते, कम अज़ कम उसको अपने जहन से निकाल दें, उसके लिए दुआ कर दें, उसके लिए अच्छी बातें लाएं, और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला जो एनर्जी देगा ना वो आपके ईमान से देगा। देखिए, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, ईमान की ताकत के साथ तनकीद और मलामत का मुकाबला करेंगे। जिसको ये कुव्वत मिल गई, अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है वो जिसको दे दे, हर एक को नहीं देता। ये तो ख़ास चीज़ें हैं जो ख़ास लोगों को दी जाती हैं। आप देखें कि कोई भी तहरीक चलती है ना तो उसके रास्ते में ये दो ही मुखालफतें हैं, या मुखालफत यानी दो ही चीज़ें आती हैं रुकावट किसी काम को करने में, या मुखालफत या मलामत। इन दोनों से जब बच जाएंगे अल्लाह ताला फिर इंसान को बहुत ज़्यादा तौफीक देगा। तो अल्लाह ताला ने इस बात को अपना फ़ज़ल कह दिया, और फ़ज़ल की बुनियाद पर यह सारी बातें कहकर लोगों को तैयार कर दिया कि अल्लाह के रास्ते के काम वही लोग करेंगे जिनमें इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत होगी। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। लेकिन क्या कभी आपने ब्लड प्रेशर चेक किया? मैंने मजाक मजाक में किया एक दफ़ा, मेरी सास है तो उनके पास मशीन है तो वो चेक करती हैं, और उनका जो आके बैठे वो उसका भी करने लगती हैं, और अपने बेटे का तो उनको हमेशा ही लो लगता है कि तुम्हारा बड़ा लो हुआ है, हैं। तो मैंने भी एक दफ़ा कहा मेरा भी चेक करें, चीखें निकल जाती हैं जब वो प्रेशर आता है, ऐसे लगता है कि आपकी ये बाजू फटने लगेंगी। लेकिन जहाँ आप कहते हैं ना फट जाएगी तो वहाँ छोड़, और उसको सेट भी वहीं करते हैं, हर एज का फ़र्क होता है, हैं। बस ये हालात की जो सख्तियाँ होती हैं ना, अल्लाह के रास्ते की मुश्किलें, ये जो भी अब सारी इसमें डिस्कस हुई हैं, ये आपका और मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रही होती हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें अब कई मिसालें दे दूंगी आपको, गाड़ियों के अलाइनमेंट करने वालों को देखें, टायर्स को चेक करते हैं, प्रेशर डालते हैं, अब इतना जहाँ उनको लगता है ये फटने लगेगा वहाँ रिलैक्सेशन, जहाँ रात अंधेरी होती है ना वहाँ खैर आती। कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत गम आने लगे तो खुश हुआ करें, मुस्कुराया करें कि अब खुशियों की रात आने वाली है। आखिरी सिफत जो अल्लाह ताला की नायतों में, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसी इल्म वाला है। यहाँ वसत की बात क्यों आई? बस दफ़ा इंसान जब अल्लाह के रास्ते का राही बनना चाहता है ना तो कहते हैं इतने लोग तो हैं अल्लाह के दीन का काम करने वाले, मेरी उसको क्या ज़रूरत है, यानी इतने लोग तो चुने गए अल्लाह के कामों के लिए, मेरी क्या ज़रूरत है। कहा नहीं, वो वासे है, तुम्हें भी इसमें सिमार लेगा। देखिए यहाँ एक जुमला याद रखें, हम में से किसी की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम में से हर एक को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह के दीन की। अल्लाह के दीन को हम में से किसी की ज़रूरत नहीं है। अबाबीलों ने काबा को बचवा लिया अल्लाह के हुक्म से, अबरहा के लश्करों के मुकाबले में। नमरूद को मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह आज भी दुश्मनों को मारने के लिए एक फरिश्ते को कहे ना अपना पर मारो, जैसे जिब्राइल ने अपना पर मारा था और एक पूरी की पूरी कौम अंधी कर दी गई, आज भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह हमें मौके दे रहा है कि तुम अपने नाम इन मुजाहिदों में लिखा लो। क्यों हिम्मतें टूटती हैं, क्यों पीछे हटते हो? अल्लाह का दामन बड़ा वसी है। और साथ ही साथ अलीम की सिफत, ये क्या है? अल्लाह को ये खूब पता है कौन दिल से दुआ कर रहा है कि अल्लाह अपने रास्ते के लिए चुन ले, लगा दे इस काम में। किसकी अब ये तड़प बन चुकी है, किसकी ज़िंदगी बन चुकी है, किसकी खुराक बन चुकी है ये, और कौन देखा देखी दूसरों के कहने पे आके लग गया, छट जाएगा? अल्लाह ताला फौरन बताता है, क्यों? कि वो अलीम है, उसको पता है किसकी तड़प कितनी है। हमें इस्लाम उस वक्त अच्छा लगता है जब तक उसके रास्ते में कोई मलामत ना आए, जो ही मलामत आने लगती है तो अंदर से मुर्तद होने लगते हैं। हमें कुरान, दीन, इस्लाम सब अच्छा लगता है, नतीजा क्या होता है कि जब ये इस्लाम हमसे कोई कुर्बानी मांगता है तो बुरा लगता है। आप अभी शायद को इस एंगल में भी देख लें आखिरी दफ़ा कि सहाबा कराम इन सारी सिफात से मुत्तसिफ थे, बदरजे उतम थी, पूरी की पूरी थी, गलबा मिला, सब मिला। उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम की दौलत मुंतकिल हो गई अरबों के हाथ में। अल्लाह के नबी इतना प्यारा दीन अरबों को दे गए, अरबों ने ये सारी सिफात ली। जब अरबों में ये सिफात थी, सारी दुनिया पे उनका डंका था। जैसे आज वेस्टर्न कल्चर से लोग मरूब हैं ना, इस तरह एक दौर था कि लोग अरबों से मरूब थे। फिर वो नफ्स के ग़ुलाम हुए, वो इन चार पांच कामों से दूर हुए, अल्लाह ने उनको पीछे किया, तातारियों को, मंगोल्स को आगे कर दिया, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियादें डाली। तारीख पढ़ा करें इस्लाम की, बहुत कुछ दिखेगा। मंगोल्स को अल्लाह ने दिया, अब तुम काम करो दीन का और मुसलमानों के फ़ायदे करो, चलते रहे कुछ अरसा, वो खिलाफत चली बहुत अच्छी। फिर उनके अंदर कमियाँ आई वक्त के साथ, जब लोगों में कमज़ोरी आती है ना तो नतायज भी बदलते हैं। और आज वो हालात आ गए कि मजमूई तौर पर मुसलमान इन सारी सिफात से आरी हो चुके हैं। तो आज जो ज़िल्लत और रुसवाई मुसलमानों को दिखती है, वो हर एक देखे। और दिलचस्प बात देखिएगा, जिनकी नज़रों में इज़्ज़त पाने के लिए हमने अल्लाह को नाराज़ किया, वो तो आज तक हमसे राज़ी नहीं हुए। आयत के शुरू में जो हमने बात देखी थी उसकी तरफ इशारा है, हैं? तो अल्लाह ताला हम सब को पैगाम देता है कि तुम क्यों फिर गिरते हो, तुम उनसे क्यों लिपटते हो, वो तुमसे कभी राज़ी नहीं होंगे। लन तरदान कल यहूद वलन नसारा, यहूद और नसारा खुश नहीं होंगे, कुछ कर लो ये राज़ी नहीं होंगे। तुम इनके जूते भी रोज़ जाके सीधे कर दो ना कि ये तुम्हें प्यार से पुचकारेंगे, नहीं खुश होंगे। खुश होंगे कब, जब तुम्हारा अपने रब से ताल्लुक़ होगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक जब खड़े हो गए, सब साथ लग गए, और अगर अबू बकर उस वक्त इन इर्तदाद के फितनों के आगे ढीले हो जाते, आज इस्लाम उस तरह ना होता जैसे दिख रहा है। इन आयात के एंगल में हमने अपने आप को देखना है।